आईएलओ और यूनिसेफ द्वारा जारी की गई एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि 2 दशकों में पहली बार बाल श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो आंकड़े क्या कहते हैं और खासतौर पर दक्षिण एशिया में क्या स्थिति है?
इस रिपोर्ट में जो कल ही रिलीज हुई है एक दिन पहले, यह पता चलता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि 2 दशकों में बाल श्रम उन्मूलन में जो सुधार आई थी अब वो धीमी पड़ गई है। और 2 दशकों से मेरा मतलब है कि सन 2000 और 2016 के बीच में मजदूरों की संख्या में करीब 9.5 करोड़ की कमी आई थी, और वो जो कमी आई है वो रुक सी गई है। जो बाल मजदूर हैं उनकी कुल संख्या करीब 16 करोड़ है, 160 मिलियन, उसमें से 85 से 90 लाख बाल श्रमिक पिछले 4 वर्षों में जुड़े हैं। और 2022 तक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि COVID-19 के कारण और इसमें अतिरिक्त 90 लाख बाल श्रम में जुड़ सकते हैं, यह संभावना है। इसमें यह भी देखा गया इस रिपोर्ट के आधार पर कि 5 से 11 वर्ष के जो बाल श्रम है उसमें बहुत ही वृद्धि हुई है। सबसे अधिक बच्चे जहां जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो कृषि क्षेत्र है, जहां पूरी बाल मजदूरी की करीब 70% आबादी सिर्फ कृषि क्षेत्र में है। और इम्पोर्टेंट डेटा में जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर भी बताया गया है कि हालांकि लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है हर उम्र में, चाहे वो 5 से 11 हो, 5 से 14 हो या 5 से 17 साल के बाल मजदूर हो, सारे में लड़के ज्यादा हैं लड़कियों से। लेकिन लड़कियों के जो घरेलू कामकाज हैं, घर में जो सहायता करती हैं या घर वाले काम करती हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाए उनकी भी संख्या लड़कों के करीब करीब बराबर पहुंच जाती है। और इसमें इम्पोर्टेंट डेटा है कि ग्रामीण इलाकों में बाल श्रम की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये इतनी ज्यादा है कि शहर से अगर तुलना करें तो करीब करीब 3 गुना है। 2000-2016 के बीच जिसमें सबसे अच्छी प्रगति देखी गई थी बाल श्रम के उन्मूलन में, तो सबसे अच्छी प्रगति देखी गई थी एशिया पैसिफिक में ही, जिसका कि दक्षिण एशिया हिस्सा है, साउथ एशिया। और आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि करीब 1.35 करोड़ बाल श्रमिक कम हुए थे, लेकिन अब कोविड के हिसाब से दुनिया भर में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जैसा मैंने बताया, और पिछले चार सालों से बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है कि दक्षिण भारत में भी इसका प्रभाव होगा और संख्या बढ़ेगी।
तो क्या इसका कारण, इस बढ़ोतरी का कारण COVID-19 ही है या कोई अन्य कारक भी है जो इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं?
सिर्फ COVID-19 के चलते कितने बाल श्रमिक जुड़े या जुड़ सकते हैं इसका डेटा नहीं है इस रिपोर्ट में, लेकिन यह तय है कि बताया गया है कि जिस तरह की गरीबी बढ़ रही है उससे करीबन 90 लाख और, मतलब 1 करोड़ के आसपास में 2022 तक, जो कि हार्डली 1 साल और बचा हुआ है, उसमें संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन इसका कारण आप जरूर बताया गया है कि क्यों बढ़ रहा है। सबसे बड़ा कारण इसमें बताया गया है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी संरचना, जिसे हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ रूरल इकोनॉमी भी कहते हैं, तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य और पारिवारिक कार्य, ये दोनों जुड़ करके इस नंबर को बढ़ा रहे हैं, और इसको अगर नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि बाल श्रम की संख्या वहीं बढ़ रही है जहां कानून को ठीक तरह से लागू नहीं किया जा रहा, यह भी एक कारण है। जो आपके किसी भी देश का जो कानून है, या तो कानून उतना सुदृढ़ नहीं है या उसको लागू नहीं किया जा रहा है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहां पे इनफॉर्मल इकोनॉमी है, खास करके कृषि कार्य है उसमें, और जो सप्लाई चेन है, जो घर पे काम होते हैं छोटे छोटे काम, उसमें इन बच्चों को जोड़ा गया है।
आपने ये भी कहा कि बाल श्रमिकों के तौर पर लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक है, इसकी क्या वजह है?
कार्य करने वाले लड़कों और लड़कियों के बीच लैंगिक अंतर, जिसे हम जेंडर डिफरेंस भी कहते हैं, उम्र सीमा में तो जरूर आपको दिखेगा कि दोनों के बीच नंबर वाइज, संख्या वाइज गैप है। क्यों? इसका मूल कारण यह है, पारंपरिक, हर देश का जो है ना पारंपरिक व्यवस्था है, कल्चरल ट्रेडिशन भी हम कह सकते हैं, उसमें देखा गया है कि इस तरह के जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, इसमें लड़के मेल मेंबर्स जो हैं वो कार्य क्षेत्र में, मार्केट इकोनॉमी में जल्दी जाते हैं, लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है, उनको कार्य क्षेत्र में भेजने के बजाय अपने घरों में या तो परिवार के साथ मिलकर काम करने के लिए या किसी दूसरे घर में घरेलू काम में उनको रखा जाता है। इस एज ग्रुप में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जो बहुत ही अर्ली मैरिज जिसे हम करते हैं चाइल्ड मैरिज, तो इसलिए भी उनकी उनका नंबर जो है चाइल्ड लेबर में रुक जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो काम नहीं करती हैं, लेकिन डायरेक्टली मार्केट इकोनॉमी में नहीं जुड़ पाती हैं। अगर घर में काम करने वाले लड़कियों का पूरा वर्किंग आवर्स, जो उनके काम करने की जितने घंटे हैं, वो अगर जोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट वो लड़के के बराबर।
तो स्थिति से निपटने के लिए आईएलओ और यूनिसेफ किस तरह अपनी रणनीति में बदलाव ला रहे हैं, खासतौर से जो अभी वर्तमान हालात हैं उनको देखते हुए, ताकि क्षेत्र में हुई दशकों की प्रगति बेकार ना जाए और बच्चों को वापस स्कूल भेजा जा सके?
यूनिसेफ और आईएलओ दोनों मिलकर संयुक्त रूप से दुनिया के तमाम देशों को यह निवेदन किया जा रहा है कि आप इन खर्च को, जो सरकारी सेवाएं हैं, उनको आप सामाजिक सुरक्षा के लिए, बच्चों को, सभी बच्चों को मुफ्त एवं गुणवत्ता, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, सो मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए, सभी वयस्कों को जो 18 साल से ऊपर है, सभ्य कार्य जिसे हम डिसेंट वर्क कहते हैं, और आईएलओ डिसेंट वर्क को खासकर प्रमोट भी करता है, उसके लिए जो भी आपके देश में बाल श्रम को रोकने के लिए नियम और कानून है, उसको इफेक्टिवली लागू करने के लिए, और कृषि कार्य में जो बाल मजदूर लगे हुए हैं, विशेष कर ध्यान देना होगा और उनको उस तरह के काम से निकालना होगा। जैसा हम सब जानते हैं कि बाल श्रम की समस्या से बालकों तक सीमित नहीं है, यह एक इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी और एजुकेशन रिलेटेड चैलेंज है, जिसको समाप्त करने के लिए उन बच्चे और उनके परिवार और उनके समाज और समुदाय सबके ऊपर हम सभी को एक साथ ध्यान देना होगा, विशेषकर सरकारों को।
रिपोर्ट देखकर क्या लगता है, क्या इससे 2025 तक विश्व में बाल श्रम की समाप्ति का जो संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है उसे हासिल करने में देरी हो सकती है, या अभी भी स्थिति को पलटना संभव है?
बाल श्रम की बढ़ती हुई संख्या को देखकर यह स्वीकार करना होगा कि हम लोग 2025 तक जो बाल श्रम समाप्त करने की प्रतिज्ञा थी यूनाइटेड नेशंस की, उसमें जरूर पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। SDG 8.7 खासकर जो बाल श्रमिक को 2025 तक समाप्त करने की बात करता है, तो SDG 8.7 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब हम सभी को एक साथ मिलकर, जो भी पिछले दो दशकों में हमने प्रयत्न किया, आप देख रहे हैं जितने बाल श्रम कम हुए थे, उसी पेस पे, उसी गति पे मुझे फिर वापस आना है। तो करीबन करीबन हम सारे स्टेक होल्डर्स को उनको 18 गुना ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। तो सिर्फ इसमें एफर्ट्स की बात है, टाइम की बात है, कमिटमेंट की बात है, और हम फिर 8.7 के जो टाइम का लक्ष्य है कि 2025 तक बाल श्रम को हम समाप्त कर लें, अगर हम 18 गुना तक कर देते हैं तो पूरी संभावना है कि फिर हम अपने पिछली जो विकास की गति थी वहां तक पहुंच पाए। लेकिन सबसे बड़ी अभी जो चैलेंज है COVID-19 महामारी, वह सभी को प्रभावित किया है, सारे देश को प्रभावित किया है, सारे तबकों को प्रभावित किया है, जिसमें बच्चे भी हैं। इस COVID-19 के संभावित प्रभाव, जो हमारा पोटेंशियल इसका इम्पैक्ट होने वाला है, अगर उसको जोड़ दें, तब तो मैं बिल्कुल निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 2025 तक लक्ष्य को पाना मुश्किल दिखता है। इसलिए अभी जरूरत क्या है, अभी जरूरत यह है कि हम इस पर विचार या विवाद नहीं करें, हम लोग एक साथ मिलकर UN और जितने अदर स्टेक होल्डर्स हैं, नेशनल गवर्नमेंट, पूरी दुनिया के सब मिलकर अपनी ऊर्जा को और तेज करें। अगर दुनिया के सारे देश इस कमिटमेंट के साथ एक हो जाएं कि 2025 के लक्ष्य को पाना है, तो यह मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है।